नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले उपन्यास पर बात करने वाले हैं।
एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है।
हाँ, और ये सवाल पूछती है कि हीरो कौन होता है? क्या हीरो वो है जो कभी कोई गलती ही ना करे,
या वो जो हजार गलतियां करने के बाद भी सही काम करने की कोशिश ना छोड़े।
बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के महान ब्रिटिश लेखक ग्राहम ग्रीन के सबसे चर्चित उपन्यास द पावर एंड द ग्लोरी की।
जी, और ये सवाल, ये इस उपन्यास की कह लीजिए रूह है। ग्राहम ग्रीन की खासियत ही यही थी, वो इंसानी फितरत की अंधेरी गलियों में उतरकर वहां रोशनी की तलाश करते थे।
उन्हें संतों की कहानियों में उतना इंटरेस्ट नहीं था।
जितना गुनाहगारों में था।
हाँ, उन्हें ये देखने में ज्यादा दिलचस्पी थी कि एक टूटा हुआ, डरा हुआ इंसान वो अपनी आस्था को कैसे थामे रखता है,
बिल्कुल।
और इसी दिलचस्पी ने द पावर एंड द ग्लोरी को जन्म दिया। ये कहानी 1940 में आई थी, पर इसकी जड़ें
उनकी 1938 की मेक्सिको यात्रा में है।
उस वक्त मेक्सिको के टबास्को प्रांत में एक ऐसी सरकार थी जो धर्म को, खासकर कैथोलिक चर्च को, जनता का दुश्मन मानती थी।
उन्होंने चर्च गिरा दिए थे। पादरियों के सामने दो ही रास्ते थे, या तो शादी कर लो।
या फिर गोली खाओ।
सोचिए क्या माहौल रहा होगा। और इसी इसी जमीन पर ग्रीन ने अपनी कहानी बुनी है।
तो कहानी एक ऐसे ही प्रांत में शुरू होती है जहां धर्म एक जुर्म बन चुका है।
जी, सारे पादरी या तो मारे जा चुके हैं या भाग गए हैं, सिवाय एक के।
हमारा हीरो, या एंटी हीरो कह लीजिए।
हाँ, उस राज्य का आखिरी जिंदा पादरी, उसका कोई नाम नहीं है उपन्यास में। लोग उसे विस्की प्रीस्ट बुलाते हैं।
विस्की प्रीस्ट, नाम से ही किरदार का पूरा अंदाजा लग जाता है। ये कोई संत महात्मा नहीं है।
संत तो बिल्कुल भी नहीं, वो शराबी है। उसे विस्की के बिना गुजारा करना मुश्किल लगता है। वो डरपोक है, हर आहट पर चौंक जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसका एक अतीत है।
उसकी एक बेटी भी है।
जी, और ये गुनाह एक बोझ की तरह हमेशा उसके साथ चलता है। लेकिन अपनी तमाम कमियों के बावजूद उसमें कुछ ऐसा है जो उसे भागने नहीं देता।
वो अपने फर्ज को छोड़ नहीं पाता।
बिल्कुल। तो उसकी ये यात्रा सिर्फ पुलिस से बचने की भागदौड़ नहीं है, ये एक रूहानी सफर भी है।
तो चलिए इसी उलझे हुए किरदार और उसके सफर को और करीब से समझते हैं। कहानी की जान तो इसके किरदार ही है।
सबसे पहले विस्की प्रीस्ट।
हाँ, वो हर वक्त खुद से नफरत और एक अपराध बोध से भरा रहता है। उसे लगता है कि वो खुदा की रहमत के काबिल ही नहीं है।
और शायद शायद यही इस किरदार की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये एक पहेली जैसी बात है ना,
कि जो आदमी दुनिया की नजर में जितना गिर रहा है,
रूहानी तौर पर वो उतना ही ऊपर उठ रहा है। उसकी यात्रा अपनी कमियों पर जीत पाने की नहीं है,
बल्कि उन्हें कबूल करने की है।
बिल्कुल। और जब वो अपनी कमजोरी को पूरी तरह मान लेता है तो उसमें घमंड की कोई जगह ही नहीं बचती। शायद यही चीज उसे दूसरे गुनेगारों के प्रति हमदर्दी और प्यार से भर देती है।
और इसका ठीक उल्टा है कहानी का विलन, लेफ्टिनेंट। मुझे ये किरदार भी बहुत दिलचस्प लगा। वो कोई मामूली विलन नहीं है जो पैसे या ताकत के लिए।
नहीं, वो एक आदर्शवादी है।
हाँ, उसे पूरी ईमानदारी से लगता है कि धर्म एक अफीम है जिसने गरीबों को हमेशा शोषित बनाए रखा है।
वो पादरी का पीछा किसी निजी दुश्मनी में नहीं कर रहा, वो एक विचारधारा के लिए कर रहा है।
पर उसकी त्रासदी यही है कि वो इंसानियत से तो प्यार करता है, पर किसी एक इंसान से नहीं कर पाता।
सही कहा, उसका आदर्शवाद बहुत ठंडा है, उसमें कोई अपनापन नहीं है। वो लोगों को रोटी देना चाहता है, स्कूल देना चाहता है, पर बदले में उनसे उनकी उम्मीद छीन लेना चाहता है।
इसीलिए कहानी के आखिर में पादरी को खत्म करने के बाद भी उसे जीत का एहसास नहीं होता।
नहीं, एक खालीपन महसूस होता है, जैसे उसने कुछ पाया नहीं बल्कि कुछ खो दिया है।
और इन दोनों के बीच एक तीसरा बहुत अहम किरदार है, मिस्तीजो।
मिस्तीजो, जिसका नाम ही उसके दोगलेपन की कहानी कहता है।
वो
इनाम के लालच में पादरी के साथ हो लेता है उसे धोखा देने के लिए। बाइबल के जूडस का प्रतीक है एक तरह से।
और पादरी ये जानता है,
वो उसकी आंखों में धोखा साफ पड़ सकता है। इसके बावजूद जब मिस्तीजो बीमार पड़ता है तो पादरी उसकी देखभाल करता है।
ये शायद उसके संत होने का सबसे बड़ा प्रमाण है।
बिल्कुल। वो उस इंसान से भी नफरत नहीं कर पाता जो उसे मौत के मुंह में धकेलने आया है।
कहानी आगे कैसे बढ़ती है? ये एक लगातार चलने वाली भागदौड़ है।
जी, कहानी की शुरुआत में विस्की प्रीस्ट सालों बाद अपने पुराने गांव लौटता है, जहां उसकी बेटी ब्रिगिटा है।
वो मुलाकात बहुत मुश्किल रही होगी।
शर्म, प्यार और बेबसी से भरी हुई उसकी बेटी उसे अपने गुनाह की जीती जागती याद दिलाती है। उसे कुछ वक्त के लिए पनाह मिलती है, लेकिन
उसे वहां से भी भागना पड़ता है।
हाँ, तो ये शुरुआती हिस्सा उसके किरदार की नींव रखता है। उसका डर, उसका गुनाह का बोझ और इन सब के बावजूद अपने फर्ज की एक जिद्दी सी भावना। कहानी का दिल, उसका नैतिक केंद्र तब आता है जब पादरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
और विडंबना देखिए, उसे पादरी होने के जुर्म में नहीं,
नहीं विस्की की एक बोतल रखने के जुर्म में पकड़ा जाता है।
उसे एक जेल की कोठरी में फेंक देते हैं जो पहले से ही खचा खच भरी हुई है।
अंधेरी गंदी कोठरी जहाँ हर तरह के अपराधी हैं।
किसी भी शरीफ इंसान के लिए वो एक जहन्नुम जैसी जगह होती।
लेकिन पादरी को वहाँ घिनाने के बजाय एक अजीब सा सुकून और अपनापन महसूस होता है।
अच्छा,
उसे लगता है कि वो अपने घर आ गया है, अपने जैसे ही टूटे हुए और गुनाहगार लोगों के बीच। वो महसूस करता है कि गुनाह लोगों को इस तरह जोड़ता है जिस तरह शायद नेकी कभी नहीं जोड़ पाती।
ये बहुत गहरी बात है।
उसी कोठरी में एक औरत भी है जो खुद को बहुत पवित्र समझती है। तब पादरी को एहसास होता है कि इस औरत का घमंड उन लोगों के जिस्मानी गुनाहों से कहीं बड़ा गुनाह है।
यानी धर्म का असली मतलब खुद को पवित्र समझकर दूसरों से अलग हो जाना नहीं है।
बिल्कुल, बल्कि टूटे हुए लोगों के साथ खड़े होना है।
जेल से छूटने के बाद वो सीमा पार कर एक ऐसे राज्य में पहुंच जाता है जहां धर्म पर कोई पाबंदी नहीं है।
हाँ, और यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है।
आराम और सुरक्षा का लालच।
जी, उसे एक साफ बिस्तर मिलता है, पेट भर खाना मिलता है और सबसे बढ़कर पुलिस का कोई डर नहीं है। उसे पहली बार एक शांत जीवन जीने का मौका मिलता है।
कोई भी इंसान तो यही जाएगा।
लेकिन उसे इस आराम में बेचैनी होने लगती है। उसे डर लगता है कि इस सुकून में वो खुदा से अपना वो तड़प भरा रिश्ता खो रहा है जो खतरे में था।
उसे लगता है कि सुरक्षा उसे रूहानी तौर पर सुस्त बना रही है।
हाँ, उसके सामने सवाल खड़ा होता है, क्या उसे अपनी जान बचा कर यहीं रह जाना चाहिए या वापस उस खतरनाक जगह लौटना चाहिए जहाँ लोगों को उसकी जरूरत है।
और ठीक यहीं पर उस धोखेबाज मैसीजो की वापसी होती है।
जी, वो उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और एक जाल फेंकता है।
वो उसे बताता है कि सीमा के उस पार एक मरता हुआ अमेरिकी गैंगस्टर
जो खुद एक कातिल है, वो आखिरी रस्मों के लिए एक पादरी को बुला रहा है।
और पादरी को पता होता है कि ये एक जाल है।
उसे पूरा यकीन होता है, वो मेस्तीजो की आंखों में झूठ साफ देख सकता है। लेकिन एक मरते हुए गुनहगार की आत्मा को बचाने का फर्ज
उसके अपने डर पर हावी हो जाता है
और वो जानबूझकर मौत के मुंह में चला जाता है,
ये जानते हुए भी कि उसका अंजाम क्या होगा,
और उसे पकड़ लिया जाता है। मौत से पहले उसकी और लेफ्टिनेंट की एक लंबी बातचीत होती है, जैसे दो अलग अलग आस्थाएं टकरा रही हों।
दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं।
पादरी एक आखिरी बार अपने गुनाहों का इकबाल करना चाहता है, लेकिन
शहर का जो दूसरा पादरी था जिसने डर के मारे शादी कर ली थी, वो मना कर देता है।
तो उसे अगली सुबह गोली मार दी जाती है। वो मरता है ये महसूस करते हुए कि वो पूरी तरह हार गया है, अकेला है।
लेकिन उपन्यास यहाँ खत्म नहीं होता।
नहीं, आखिरी सीन में एक परिवार जिसने कभी पादरी को पनाह दी थी, उनके दरवाजे पर देर रात एक दस्तक होती है।
दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा है
और वो कहता है, मैं नया पादरी हूँ।
वाह, यानी शहादत बेकार नहीं गई, एक इंसान को खत्म किया जा सकता है।
लेकिन उस विचार को, उस आस्था को नहीं।
तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा विषय तो गुनाह और रहमत का ये अजीब रिश्ता ही है। कि खुदा की कृपा शायद साफ सुथरे पवित्र लोगों के जरिए नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा टूटे हुए लोगों के जरिए काम करती है।
विस्की प्रीस्ट की कमजोरियां ही उसे इंसान और हमदर्द बनाती हैं। ये घमंड और विनम्रता की भी कहानी है।
सही कहा, लेफ्टिनेंट अपने आदर्शों के घमंड में अंधा है,
जबकि पादरी अपनी खुद की नजरों में इतना गिरा हुआ है कि उसमें विनम्रता के सिवा कुछ बचता ही नहीं। और सबसे बढ़कर ये संत होने की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देती है।
हाँ, शायद संत होना परफेक्ट होना नहीं है।
संत होना ये है कि आप 100 बार गिरे, लेकिन डरते डरते, कांपते कांपते भी 101वीं बार उठकर अपने फर्ज के रास्ते पर चलने की कोशिश करें।
ये कहानी हमें सिखाती है कि पवित्रता और साहस सबसे अप्रत्याशित जगहों और सबसे टूटे हुए इंसानों में मिल सकते हैं।
और शायद सच्ची ताकत अपनी कमजोरियों को कबूल करने से ही जन्म लेती है, उन्हें छिपाने से नहीं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।